ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Srimad Bhagavatam, chapter 9th canto, chapter 5, text number 7.
तो आज हम श्रीमद् भागवतम से पढ़ रहे हैं स्कंद संख्या 9, अध्याय संख्या 5, श्लोक संख्या 7.
त्वत्तेजसा धर्ममयेन संकृतम् धम्मा प्रकाशः सदृशो महात्मनाम् Dhamma Prakashash Chadrisho Mahatmanam. Translation.
Anuvad.
O Master of Speech, by your effulgence, full of religious principles, the darkness of the world is dissipated, and the knowledge of learned persons or great souls is manifested.
He Vanige Swami, Dharmik Siddhanto Se Poorn, तुम्हारे तेज से संसार का अंधकार दूर हो जाता है और विद्वान पुरुषों या महात्माओं का ज्ञान प्रकट होता है।
No one can, indeed no one can surpass your effulgence, for all things manifested and unmanifested, gross and subtle, superior and inferior, are but various forms of you that are manifested by your effulgence.
निस्संदेह कोई तुम्हारे तेज का पार नहीं पा सकता, क्योंकि सारी वस्तुएं चाहे प्रकट अथवा अप्रकट हो, स्थूल अथवा सूक्ष्म हो, उच्च अथवा निम्न हो, आपके तेज के द्वारा प्रकट होने वाले आपके विभिन्न रूप ही है।
So these are prayers offered by Maharaj Ambarish when Narasa Muni was attempting prayers because he was very upset over the whole situation. He realized his Mahaparad.
तो जब दुर्वासा मुनि से अपराध हुआ, अम्बरीश महाराज के चरणों में पवित्र अम्बरीश महाराज की स्तुति करने का प्रयास करने लगे, तो अम्बरीश महाराज ने ये स्तुति की सुदर्शन चक्र को।
So these are not the prayers by Durvasa, but these are the prayers by Amrish.
ये प्रार्थना जो है अम्बरीश महाराज के द्वारा है सुदर्शन चक्र के लिए।
Let us recite the Guru Parampara pranams, please.
Guru Parampara pranam mantra bolenge.
Namah Om Vishnu Padaya Krishna
Prasthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharini निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मज्ञानार्थ मीरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुत पद्मकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागर जातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगन ता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी कदे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
Translation again. O master of speech, by your effulgence, full of religious principles, the darkness of the world is dissipated.
हे वाणी के स्वामी, धार्मिक सिद्धांतों से पूर्ण तुम्हारे तेज से संसार का अंधकार दूर हो जाता है और विद्वान पुरुषों या महात्माओं का ज्ञान प्रकट होता है।
So Maharaj Ambarish is praying to Sudarshan Chakra.
तो यहाँ पे महाराज अम्बरीश सुदर्शन चक्र से प्रार्थना कर रहे हैं।
He continues, and the knowledge of learned persons or great souls is manifested.
जो विद्वान पुरुषों का जो ज्ञान वो प्रकट होता है।
Indeed, no one can surpass your effulgence, for all things manifested and unmanifested, gross and subtle, superior or inferior, are but various forms of you that are manifested by your effulgence.
निस्संदेह कोई तुम्हारे तेज का पार नहीं पा सकता, क्योंकि सारी वस्तुएं, चाहे प्रकट अथवा अप्रकट हो, स्थूल अथवा सूक्ष्म हो, उच्च अथवा निम्न हो, आपके तेज के द्वारा प्रकट होने वाले आपके विभिन्न रूप ही है।
By Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Without illumination, nothing can be seen, especially in this material world.
तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। प्रकाश के बिना इस भौतिक संसार में कुछ भी नहीं देखा जा सकता है।
So the universe consists of darkness.
तो ये जो सृष्टि है ये अंधकार में है।
In fact, before the sun planet was manifested, there was total darkness. Lord Brahma found himself sitting up on top of the lotus flower at the beginning of the creation, and there was no light. Everything was dark.
यहाँ तक कि जब सूर्य प्रकट हुए थे इस ब्रह्मांड में, उससे पहले ब्रह्मा जी कमल के ऊपर बैठे हुए थे और पूरे चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था.
So therefore, the statement that without illumination, nothing can be seen.
तो इसलिए जो यहाँ पे कथन आया है कि बगैर प्रकाश के कुछ भी नहीं देखा जा सकता,
especially in this material world.
खास करके इस भौतिक जगत में।
This statement by Prabhupada is significant because in the spiritual world, everything is illuminated automatically. Everything is self-effulgent.
तो ये कथन जो है श्रील प्रभुपाद के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आध्यात्मिक लोकों में सब चीज जो है स्वयं ही दिव्यमान प्रकाशमान होती है।
The jivas are self-effulgent. The entire, you could say, stage set of Vaikuntha is effulgent.
आध्यात्मिक लोक में जो जीव है वो भी दिव्यमान रहते हैं, प्रकाशमान रहते हैं, और यहाँ तक कि वैकुंठ स्वयं
palaces, the building, the prasad, everything is effulgent.
भली महल हो चाहे अटारिया हो, आध्यात्मिक लोक में सब स्वयं प्रकाशमान रहते हैं.
वृंदावन, गोलोक वृंदावन, everything is effulgent also.
गोलोक वृंदावन में भी सब कुछ effulgent है, यानी कि प्रकाशमान है.
But just to increase the pleasure of the Lord and the gopis for their rasa lila.
लेकिन फिर भी परम भगवान और गोपियों के आनंद को बढ़ाने के लिए,
there may be a manifestation of light time so that the moon can shine.
तो आनंद बढ़ाने के लिए रास लीला के दौरान जो है पूर्ण चंद्रमा
की
रोशनी थी.
So it cannot be compared at all to the material world. It's basically just like a stage set. It's a transcendental stage set.
तो पर वो जो पूर्ण चंद्र जो है रासलीला का, उसको भौतिक जगत से तुलना नहीं कर सकते. वो तो एक स्टेज सेट, जैसे कि ड्रामा में स्टेज सेट होता है वैसा है.
On big big professional stage productions, they can make all kinds of illusions.
जैसे कि अगर आप देखेंगे जो है नाटक में, जैसे कि बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग जो है अलग तरह से स्टेज बनाते हैं.
They can show the stage as being something dark, but they might give it some bluish color and purplish color also.
जैसे कि वो स्टेज पे जो है कभी अंधकार दिखा सकते हैं, कभी नीला रंग, नीला कांति दिखा सकते हैं, कभी पर्पल कांति.
And they may put a artificial moon, a full moon in the sky, if that's what the script calls for. Then they can put an effulgent moon in the sky, no problem.
तो ये जो मंच में, मंच पे फिर वो स्टेज पे एक आर्टिफिशियल मून भी बना सकते हैं.
So in one sense, the spiritual world is like a transcendental stage set.
तो एक तरीके से जो है आध्यात्मिक लोग पूरा इसे समझिए जैसे कि दिव्य मंच है जहाँ पे भगवान लीला करते हैं.
All kinds of special effects may be there.
और वहाँ पे अलग तरह के special effects जो हो सकते हैं.
Such as the conception of night time so that the gopis can dance with Krishna in a romantic environment.
जैसे कि जो है नाइट टाइम का जो स्पेशल इफेक्ट ताकि जो है गोपी गोपियां जो है कृष्ण के साथ नृत्य कर सके रात के समय.
But it's compared to the stage because it is all Ladini Shakti, it's all internal Bunsi.
पर ये सब होते हुए भी सब मंच ही है क्योंकि ये सब जो है भगवान की अलादिनी शक्ति अंतरंगा शक्ति के द्वारा किया जाता है.
It cannot at all be compared to material world because in the material world the darkness is called by tamagun. Tamagun.
तो वो जो है जो रासलीला का जो रात है उसको भौतिक जगत की रात से तुलना नहीं की जा सकती.
Practically speaking, the tamagun is or mode of ignorance is all pervading in the material world.
उसकी भौतिक जगत से तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि भौतिक जगत की रात तमोगुण में है और भौतिक जगत में हर चीज पूरी तमोगुण में है.
Because of this, the Lord has to manifest as the sun planet in order to light up the universe. Otherwise, everything finished.
तो इस लोक में जो है सूर्य इसलिए सूर्य से प्रकाश होता है नहीं तो सब कुछ तमोगुण अंधकार में ही है.
Without the sun, presence of the sun, all 8,400,000 species, practically almost all of them would die.
अगर सूर्य नहीं होगा भौतिक जगत में तो सारी 84,00,000 योनियां एक तरह से मर ही जाएगी.
So the Lord supplies the sunlight in order to nourish the living entities.
तो इसलिए परम भगवान जो है सूर्य की रोशनी देते हैं ताकि 84,00,000 योनियों का पोषण हो सके.
Of course, Surya is generally an incarnation, partial incarnation of Lord Vishnu.
और देखा जाए तो सूर्य जो है वैसे भगवान विष्णु का ही जो है आंशिक विस्तार है, आंशिक अवतार.
So then, this is a mercy of the Lord to create a livable situation in the material world. Otherwise, everyone would perish.
तो ये जो है परम भगवान की कृपा है भौतिक जगत में जो जीव है उन लोगों का पोषण करने के लिए. यही तो सब लोग मर ही जाएंगे बगैर सूर्य के.
So, therefore, Prabhupada says, without illumination, nothing can be seen.
इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं बगैर रोशनी के कुछ भी नहीं देखा जा सकता.
Especially in this material world.
खास करके इस भौतिक जगत में.
Well, the point is to emphasize that Prabhupada is emphasizing the difference between the spiritual world and the material world.
तो यहाँ पे बात यहाँ पे ये है कि प्रभुपाद भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की तुलना कर रहे हैं यहाँ पे.
Because even in Goloka Vrindavan, while Krishna and the gopis have romantic environment for dancing. Under a full moon,
देखा जाए तो जैसे आध्यात्मिक लोग पे जहाँ पे ये वातावरण बनता है रोमांटिक वातावरण प्रेम का, इसपे कृष्ण और गोपियाँ नृत्य करते हैं रासलीला का.
It's going to be an effulgent so-called night time. You understand? It can't be compared to our darkness of the mundane world. It just can't.
तो वो उसको जो है भौतिक जगत की रात से नहीं तुलना की जा सकती. वो रात्रि भी स्वयं प्रकाशमान है.
That's why we are using the example of an elaborate stage set, like in New York City, for example, and other major cities in the world. They have these giant professional theaters, and they've got state-of-the-art everything computerized now. Special lighting effects, special effects. Now electronic, but it used to be mechanical. Now it's all electronic, digitalized, computer-controlled, etc.
इसलिए हम जो है एक एक जो है मंच का उदाहरण ले रहे हैं. जैसे कि आप देखेंगे बड़े बड़े शहरों में न्यूयॉर्क जैसे वहाँ पे प्रोफेशनल ये जो है ऐसे थिएटर्स होते हैं और ऐसे प्रोफेशनल टेक्नीशियन होते हैं जो कि ऐसे स्पेशल इफेक्ट्स करें स्टेज पे जैसे न्यूयॉर्क में देख सकते हैं.
So if on a mundane stage set, in order to increase the mood that they want to create, it's not going to be a night time of total darkness, but it may be an effulgent night also composed of material energy, say purple and dark blue and so forth, but not solid black, because they want to create a mood on the stage.
तो इसमें जो एक कृत्रिम रूप से ये professional जो है पूरा एक वातावरण देते हैं स्टेज पे, जैसे कि purple color देंगे और जैसे art कृत्रिम रूप से चंद्रमा दिखाई देगा, पर ये वास्तव में नहीं है, पर पूरा वातावरण बनाने के लिए शो के लिए.
So we see how everything's a perverted reflection of the spiritual world in the material world.
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे हर चीज जो है विकृत परछाई है भौतिक जगत में, हर चीज विकृत परछाई है आध्यात्मिक लोक की.
In a mundane world, lovers are going to want to meet and have their romantic dealings under a full moon, you see.
जैसे कि भौतिक जगत में हम देख सकते हैं कि दो प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं और वो चांद की चांदनी में जो है मिलके आपस में डीलिंग करते हैं.
Where from comes this idea?
तो ये जो विचार कहाँ से आ रहा है इस भौतिक जगत में?
राधा कृष्ण लीला.
राधा कृष्ण की लीला से आ रहा है.
So in the material world, everything's a perverted reflection of Radha Krishna lila, practically.
तो भौतिक जगत में हर चीज जो है वो परछाई है राधा कृष्ण की लीला की.
This whole obsession over sex is the perversion of the loving relationships of Krishna and the gopis.
ये जो पूरा जो सेक्स है मैथुन का जो पूरा प्रक्रिया है ये जो है पूरा उसी का ही परछाई है आध्यात्मिक लोक की उल्टी.
The foolish, impersonalist, the mayavadis, the followers of Shankaracharya and the Buddhists, they try to wipe out desire. No, this desire to interact with others, this is not good.
तो जो मूर्ख लोग होते हैं मायावादी होते हैं शंकराचार्य के जो फॉलोअर्स होते हैं वो कहते हैं कि इस इच्छा को खत्म कर दो इस इच्छा को खत्म कर दो.
Well, is that a complete understanding? Is that a proper understanding?
क्या ये पूरी अच्छी से समझ है कि इस इच्छा को खत्म कर दो?
You're saying yes.
आप कह रहे हैं
हाँ. You're saying yes. It is proper understanding.
Huh?
He thinks yes. That's the proper understanding. Wipe out desire. Is the highest truth to wipe out desire? Make it nirvisesa shunyavadi. Is that the highest truth?
क्या ये क्या सबसे ऊंचा सत्य ये है कि हर इच्छा को खत्म कर दी जाए?
It is the highest truth.
It can be achieved. He thinks so.
It can be achieved. He thinks so.
Wiping out desire can be achieved.
क्या भगवान बता रहे हैं कि भगवान के प्रति सच्चे प्रेम से हम जो अपनी इच्छाओं को खत्म कर सकते हैं.
Turn up the volume on his mic. It's not loud enough. Hello, anybody home back there? Turn up the volume on his mic. My mic is fine. Do you agree with him? Wiping out desire is first class.
तो जो प्रभु जी कह रहे हैं कि इच्छा को खत्म कर सकते हैं मार सकते हैं क्या आप इनकी बात से सहमत है? कौन सहमत है?
Do you agree with him? Wiping out desire is the goal of life. I'm talking to you with the black coat. You. No. How many of you agree with him that wiping out desire is the goal of life?
कौन कौन जो है इनकी बात से सहमत है कि इच्छा को मार डालना हमारे जीवन का लक्ष्य है? वो हाथ खड़ा कर सकते हैं जो इनकी बात से सहमत है.
You agree that wiping out desire is the goal of life? No. But see, the Prabhus don't seem to agree with the concept, your concept. Wiping out desire. This is the Buddhistic philosophy. Wipe out desire. This is Shankar's philosophy. Wipe out desire. Nirvisesha shunyavai. Wipe it out.
तो ये जो शून्यवाद और मायावाद का सिद्धांत है कि इच्छाओं को मार डालो खत्म कर दो सब कुछ.
But we go with these Upanishad. We don't go with these impersonal, these heavy impersonal teachings. We don't go with these things.
पर हम जो है ईशा उपनिषद की शिक्षा लेते हैं. हम जो ये impersonalist लोगों की शून्यवादियों की शिक्षा नहीं लेते निर्विशेषवादियों की.
Because the ईशा उपनिषद says that these persons who want to wipe out individual identity and want to wipe out desire.
क्योंकि ईशा उपनिषद कहते हैं कि ये लोग जो कि अपने पूरा व्यक्तिगत अपनी 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 आइडेंटिटी को पहचान को मिटा देना चाहते हैं.
ईशा उपनिषद calls this atmahana.
तो ईशा उपनिषद इस विचार को कि अपनी पूरी पहचान को मिटा देना इसको आत्महानम कहते हैं.
Same in Hindi.
आत्महाना मतलब अपने आप को मारना.
आत्महाना the same in Hindi.
Killing अपने आप अपनी आत्मा को मारना.
The killer of the soul. आत्महाना means the killer of the soul.
अपनी आत्मा को मार डालना.
Same in Hindi.
Yes.
Yes no.
I translated. Huh? Killing the soul. I translated.
Same.
Yes.
So what is this? You know, killing the soul concept because Bhagavad Gita says the soul can't be killed. So what is this? Ishu Upanishad says, the killer of the soul, whoever may he may be, must enter into the darkest regions of ignorance. So we have to take this Ishu Upanishad, and we have to reject this impersonal conception.
तो ये जो विचार है कि आत्मा को मार डालना, ये आत्मा तो मरती नहीं, इसे हम गीता से हमें जानकारी मिलती है। तो हमें ईशोपनिषद को बात बात समझनी है और हमें निर्विशेष शून्यवाद को क्यों खंडन करना है ईशोपनिषद से।
This is why Srila Prabhupada translated and printed and published Ishopanishad in 1969 at the very beginning of the movement. Why?
इसलिए श्रील प्रभुपाद ने 1969 में ही जब जब पूरा आंदोलन शुरू ही हो रहा था तभी प्रभुपाद ने ईशोपनिषद जो है पब्लिश करी।
The very foundation of this movement, 1969, Prabhupada translated, published, and caused the devotees to distribute everywhere Ishopanishad.
जब यह आंदोलन की शुरुआत थी 1969 में तभी श्रील प्रभुपाद ने ईशोपनिषद को ट्रांसलेट किया, प्रिंट करा, पब्लिश किया और भक्तों को बोला ये पढ़े और बांटे।
So when Ishopanishad first came up, we would sit down and we would read all the shlokas. We would chant them out loud. It was very wonderful.
तो जब ईशोपनिषद आए तो हम सब लोग जो बैठकर उसके जो है मंत्रों का उच्चारण करते थे।
Now hardly any devotees read Ishopanishad. Hardly any read it.
और अभी हम देखते हैं कि बहुत ही कम भक्त, कोई विरला विरला भक्ति जो है ईशोपनिषद पढ़ता है।
How many of you sitting here today have read Ishopanishad?
जितने भक्त यहाँ पे बैठे हैं इनमें से किस किस ने ईशोपनिषद पढ़ रखी है?
Ladies and gentlemen, that's a very small percentile. We're talking about, all right, so there's what, maybe 60 people here today? Maybe 60 people here today.
जैसे कि हो सकता है कि लगभग 60 भक्त होंगे इस हॉल में लगभग।
Utmost 10 or 12 have read Ishopanishad.
तो इन 60 भक्तों में से केवल 10 या 12 भक्तों ने ईशोपनिषद पढ़ी है।
How many of you are initiated?
आप में से कितने भक्त जो दीक्षित हैं?
Now you should be very, very ashamed. You're initiated, but you have not read Ishopanishad. You should be totally and massively ashamed. You should be very ashamed that you're initiated and have not read Ishopanishad. This is a travesty.
तो ये तो बहुत ही शर्म की बात है, बहुत 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 ज्यादा शर्म की बात। आपको तो बहुत 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 ज्यादा शर्म आनी चाहिए कि आप दीक्षित हो गए हैं और तब भी आपने ईशोपनिषद नहीं पढ़ रखी।
If it's not very important, then why did Srila Prabhupada present Ishopanishad in 1969? At the very beginning of the movement, at the very foundation of this movement.
अगर ये महत्वपूर्ण नहीं था, तो श्रील प्रभुपाद ने बिल्कुल आंदोलन की शुरुआत में ही इसको क्यों अनुवाद करके हमें दिया?
To attack at the core of the heart of Nirvishesha Shunyavada, impersonalism and voidism. To go to the heart of it. Because after all, Prabhupada introduced this movement in the West. And the West... even the Christians are nowadays are modern Christians are impersonalists also.
क्योंकि श्री प्रभुपाद ने ये आंदोलन शुरू करा वेस्ट में, पाश्चात्य देशों में, वहां पर जो है यहाँ तक कि क्रिश्चियंस भी जो है वो भी जो है निर्विशेष शून्यवाद को ही मानते हैं। तो प्रभुपाद ने इसलिए ईशोपनिषद दी ताकि बिल्कुल इसके इस सिद्धांत के अंदर घुसकर इसका खंडन कर सके।
Even those Christians that mean well and are trying to worship God, but unfortunately they have no knowledge about God.
ऐसे क्रिश्चियंस जो है भगवान की पूजा करने का प्रयास करते हैं पर उनको भगवान के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं है।
It's difficult to worship somebody if you don't know anything about them.
आप कैसे किसी की पूजा कर सकते हैं जब आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है?
Even the perverted reflection is say people worship movie stars, they worship rock and roll heroes.
और जैसे कि उल्टी परछाई देखेंगे भगवान की पूजा के तो लोग पूजा करते हैं मूवी स्टार्स की, अभिनेताओं की, या फिर जो है ये पॉप पॉप स्टार्स की।
You ask somebody who is completely sold out to a particular movie star.
आप पूछे किसी से जो कि बिल्कुल बिका हुआ है किसी मूवी स्टार के, किसी अभिनेता के।
Who is that guy with the little beard, the most famous movie star in India?
वो कौन है जो वो कौन अभिनेता है जिसकी छोटी सी दाढ़ी है और बहुत मशहूर है मूवी स्टार?
Thousands of hoarding boards and magazine ads all over India.
अमिताभ बच्चन.
अमिताभ मांझी. That's close enough. Anyways, you know who I'm talking about.
तो आप सब समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जिनकी छोटी सी दाढ़ी है और हर हर मैगजीन के आगे की फोटो होती है वो अभिनेता।
Unfortunately, all his fame and money can't help him at the time of death.
दुर्भाग्यवश उस अभिनेता का सारा धन ऐश्वर्य उसको मृत्यु के समय नहीं बचा सकता.
Few years back, he became extremely ill and almost died. So what is the use of the fame? What is the use of the name? What is the use of the money? It cannot save you from disease, mrityu, jara, vyadhi, old age, disease, death. Cannot save you if you're worth millions of crores.
कुछ समय पहले ही वो मृत्यु शैया पे थे, बीमार थे. तो क्या फायदा है इतना धन ऐश्वर्य का, जबकि उसको जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि से नहीं बचा सकता. सब बर्बाद हो जाएगा क्योंकि वो उसको नहीं बचा सकता.
At least the core family of the Birlas, at least they're devotees, they're Vaishnavas.
इससे कि हम देखते हैं इसके बिरला परिवार, कम से कम देखते हैं बिरला परिवार के जो सदस्य है कम से कम थोड़े वैष्णव है.
You know that?
कि आप जानते
हैं
बिरला परिवार के सदस्य जो है वो इस्कॉन के भक्त है.
I attended a special program with Radhanath Swami at the Birla Mansion in Mumbai.
Maharaj ke param pujni Radhanath Maharaj ke saath Birla Mansion mein, Birla ke mahal mein, Mumbai mein ek program attend kiya tha.
It's constructed like a fort.
To Birla ka jo mahal hai, wo kile ki tarah bana hua hai.
The walls must be almost a meter thick.
जो उसकी दीवारें हैं वो एक एक मीटर मोटी है.
And the walls around their estate are as tall as these windows here.
और वो इतनी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें हैं.
And inside there is this large mansion, very old. It must have been built in say the 1920s or so.
और वो बहुत ही पुराना महल है, लगभग 1920 के अराउंड बना होगा वो.
And when you go there, they will happily show you the room where Gandhi used to stay before the revolution.
तो अगर आप जाएंगे तो वो आपको दिखाएंगे वो कमरा जिसमें गांधी जी भी रुके थे उन्हीं के.
So apparently the Birlas got away with being supporters of the revolution without getting, you know, killed or something. I guess they were more than the British could deal with, but they must have kept their support undercover at that time.
तो बिरला उस समय जो है सब चीजें सपोर्ट करते थे.
But they happened to show you the room where Gandhi stayed. So the whole place is a museum. Most of their estate is a somewhat dismal museum to the past. I wouldn't want to live like that.
उनके महल के अधिकतर कमरे जो अभी म्यूजियम का कार्य करते हैं, यानी कि वहाँ पे कुछ चीजें हैं पहले की.
They have a few modern rooms. That's it.
They have a few.
A few modern rooms.
तो अधिकतर कमरे जो हैं वो पुराने हैं, 1920 के बने हैं और कुछ अभी अभी के बने हैं.
Whereas even the Christians say you can't take it with you.
तो ये तो यहाँ पे बात ये है कि इस धन ऐश्वर्य आप अपने साथ नहीं ले जा सकते.
Your wealth, your name, your fame, your dynasty, your dog, you can't take it with you.
आपका धन, आपका ऐश्वर्य, आपका नाम, आपका जो है इतने आप जो प्रसिद्धि, याद तक कि आपका कुत्ता भी आप कहीं भगवत धाम नहीं ले जा सकते, मतलब मृत्यु के बाद नहीं ले जा सकते.
Nowadays in modern times, most people are cremated like in India, you know, because the what you call burial grounds are full. They don't have room anymore. But they used to build small mausoleum, you know, mausoleum. They used to build small shrines like a temple. I mean, it would be you know, there used to be a tomb the size of from this column to the wall. That means it would be you know, what's about 8 meters wide, perhaps. A large tomb, you know.
तो पहले के समय जब लोग मरते थे तो उनके लिए जो है टोम्स बनाए जाते थे जिसको समाधि बोलते थे, पर आज के समय में तो सबको दफना देते हैं क्योंकि इतनी जगह नहीं है.
एंड देन the pickled dead body of the wealthy man would be inside that room with all his favorite paraphernalia.
और जो समाधि बनाते थे उसमें जो है मान लीजिए कोई अमीर व्यक्ति मरा तो उसकी सारी जो है पसंदीदा चीजें जो उसको अच्छी लगती थी वो उस कमरे में रख देते थे उसकी मृत्यु शैया के साथ.
His favorite pipe, his favorite books.
उसका favorite जो है books वगैरह, उसके favorite जो है हुक्का पाइप वगैरह.
Ultimate tamagun, you know, ultimate tamagun.
तो ये तो पूरा जो तमोगुण है उसके.
And then also, in the West they have what's called taxidermists. Taxidermist means they're a type of technician who take an animal and they know how to take all the they remove the skin, the covering and all that, and they pickle it and they preserve it, and then you know, that can be used for trophies, like hunters like put the whole head of a deer on the wall, for example.
और जैसे कि विदेश में एक ऐसे टेक्नीशियन होते हैं जो क्या करते हैं कि जानवरों की खाल निकाल कर और उसमें जो भूसा भरकर सजाते हैं दीवारों पे.
So the wealthy man, when he dies, of course his pet dog is also going to die at some point. So they pickle his pet dog and they put his pet dog in the museum also.
तो जैसे मान लीजिए कोई अमीर व्यक्ति मरा और उसका बहुत ही लाडला कुत्ता भी मरा उसके साथ, तो उस कुत्ते के खाल के अंदर जो भूसा भरकर उसी के समाधि के अंदर उसके साथ उसको साथ उसका लगाते थे.
They don't do this anymore, but they used to do it.
आजकल ऐसा नहीं होता, पर पहले ऐसा होता था.
The only reason they don't do it anymore is because the burial grounds have run out of space. They don't have room for this anymore.
आजकल ऐसा इसलिए नहीं, समाधियां इसलिए नहीं बनाते क्योंकि इतनी जगह नहीं है लोगों के लिए.
Anyways, so Atmahana, the killer of the soul, whoever he may be, must go enter into the darkness region of ignorance.
So जो भी हो, ईशोपनिषद का वो श्लोक कि आत्महानम, यानी जो आत्मा को मारता है, जो कोई भी वो हो, उसको निश्चित रूप से अंधेरे से अंधेरे जो है नरकों में ले जाया जाएगा.
But you may argue that Bhagavad Gita says the soul cannot be killed, so then how can Ishupanishad to the full, how can the Ishupanishad contradict Bhagavad Gita?
तो आपको यहाँ पे तर्क कर सकता है कि गीता में कहा गया कि आत्मा को मारा नहीं जा सकता, तो भगवत गीता कैसे ईशोपनिषद को खंडन कर रहा है, कोई पूछ सकता है?
Interesting question, isn't it?
ये बहुत ही रुचिकर प्रश्न है कि नहीं?
Do you think Sri Ishupanishad is contradicting Bhagavad Gita?
क्या आपको लग रहा है कि ईशोपनिषद जो भगवत गीता की बात को नकार रहा है यहाँ पे?
Not contradicting Bhagavad Gita. Why not? Ishupanishad says the killer of the soul, whoever it may be, must enter in the darkest regions of ignorance. But second chapter Bhagavad Gita says, Krishna says, the soul can't be killed. So why isn't it contradictory?
तो ईशोपनिषद कह रहा है कि जो भी आत्मा को मारेगा वो नरकों में जाएगा, और भगवद गीता में कहा जा रहा है कि आत्मा को नहीं मारा जा सकता, तो क्या ये विरोधापस विरोध बातें हैं कि नहीं है?
Do you understand why is it not contradictory?
He is saying it is same only. It is
same,
not contradictory.
Yes. So I have to understand the concept of Atmahana, what it means.
तो अब यहाँ पे मैं समझना है कि आत्महानम यानी कि आत्मा को मारने वाला इसका मतलब क्या है?
It's not the soul itself that is killed. तो आत्मा, Krishna makes it clear that the soul can't be killed.
कृष्ण कहते हैं गीता में कि आत्मा नहीं मरती, लेकिन ये हम मरते हैं, सेल्फ मरता है.
Then what is the meaning of that shloka then, you see?
तो फिर इस श्लोक का मतलब क्या है फिर ईशोपनिषद के?
Point is that they try to kill the soul. They try to kill it. You cannot kill the soul. But Krishna says clearly can't be cut by any weapon, can't be withered by the wind, can't be burned by fire, can't be wet by water. So then you can't kill the soul. So how Ishupanishad says the killer of the soul. See, this is a riddle. You know a riddle?
तो कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता, कोई सुखा नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई उसका कोई उसको काट नहीं सकता, और फिर यहाँ पे जो है ईशोपनिषद में कहा जा रहा है कि आत्मा को मारने वाला नरक में जाएगा. तो एक तरह से देखा जाए पहेली है.
The answer is that one who wants to kill off identity like that, wants to kill off all action, all interaction of senses, of sense objects, etc. One who wants to do that, this perfection of certain types of Buddhistic philosophy, Nirvisesha Shunyavadi.
तो इस पहेली का समाधान ये है कि जो आपकी आत्मा को मारा नहीं जा सकता पर आत्मा को मारने का प्रयास कर रहा है वो व्यक्ति, कैसे कि वो अपनी पूरी पहचान, अपनी सारी इच्छाएं, अपने सारे एक्शंस, क्रियाएं, उन सबको खत्म करना चाहता है, अपनी पूरी पहचान को खत्म करना चाहता है.
It goes something like this. Yeah. I saw a cat. The cat is black. Therefore, all cats are black.
इसको ऐसे समझ सकते हैं. ध्यान से सुनिएगा कि मैंने बिल्ली को देखा. मैंने बिल्ली को देखा. बिल्ली काली थी. तो तो सारी बिल्लियां काली होती है.
Is that good logic?
क्या ये अच्छा न्याय है?
Not good logic.
ये अच्छा.
Can I understand? This is the illogic of impersonalism. In this example, is encapsulated in this example. I saw a cat. The cat was black. Therefore, all cats are black. Nonsense.
तो ये लॉजिक लेते हैं बुद्धिस्ट फिलोसोफर्स कि मैंने बिल्ली को देखा, बिल्ली काली थी तो सारी बिल्ली काली है. क्या ये न्याय ठीक है? तो ये बिल्कुल बकवास का न्याय है.
Here in India we see most of the street cats are white and orange combination.
जैसे कि हम देखते हैं भारत में भी जैसे बहुत सारी बिल्लियां सफेद रंग की होती है या फिर ऑरेंज कलर की होती है.
Some brown cats also.
कुछ ब्राउन कैट, कुछ ब्राउन बिल्लियां भी होती है.
There's a wider variety of cats in the West because people are really into cats in the West.
तो विदेश में तो वैसे बहुत सारी अलग-अलग रंग की बिल्लियां होती है क्योंकि वहाँ पे बिल्लियों से बहुत लगाव होता है लोगों को.
And you might be surprised to know that in Indonesia the Muslims are into cats. They're not into dogs, but they're keeping cats.
आप हैरान होंगे सुनके कि इंडोनेशिया में मुस्लिम्स जो है वो कुत्ता नहीं पालते हैं, बिल्ली पालते हैं.
Different houses you'll see the Muslims are keeping cats, they're not keeping dogs.
इंडोनेशिया में जो है वो अपने घरों में बिल्लियां पालते हैं, कुत्ता नहीं पालते.
Don't ask me why.
ये इसका अब ये मत पूछिएगा मुझसे कि क्यों ऐसा करते हैं.
So I saw a cat, the cat was black, therefore all cats are black.
तो मैंने बिल्ली को देखा, बिल्ली काली थी तो सारी बिल्लियां काली है.
This is the defect of impersonal philosophy. When they Atmahana, when they want to kill the soul, they're trying to do it. You cannot, but they try.
तो ये जो है कमी है शून्यवाद और निर्विशेषवाद फिलोसफी के अंदर. वो आत्मा को मारना चाह रहे हैं. आत्मा नहीं मर सकती, पर चाह रहे हैं पूरी की आत्मा मर सके.
They know Buddhists and Mayavadis. They know about the samsara cycle. They use the same terminology. As we do, it's in the Vedas. The samsara cycle of repeated birth and death.
So Buddhists and impersonalist philosophers, ये जानते हैं कि संसार एक चक्र के समान है. तो बार-बार ये उदाहरण इस्तेमाल करते हैं, संसार चक्र, संसार चक्र.
And they have limited knowledge.
पर उनके जो ज्ञान है, वो सीमित है, limited है.
They know that the interaction of the material senses and the sense objects, specifically sex and any kind of enjoyment. Food, anything like that, must result in suffering. They know that, so there's a tiny spark of incomplete knowledge is there, but it's defective.
तो उनको बहुत ही अल्प ज्ञान है चीजों का, जैसे कि वो जानते हैं कि इंद्रिय विषयों से संपर्क करती है, खासकर के मैथुन क्रिया के बारे में, खाना खाते हैं, ये सब जानते हैं वो कि सब कैसे जो है इंद्रिय विषयों से संपर्क करती है, पर वो ज्ञान बहुत ही अल्प है, अधूरा ज्ञान है उनका.
Followers of Shankar, they also know about 8,400,000 species. They also know that that they've been traveling through all these species. They know that, but the understanding is spoiled.
तो ये Buddhist philosophers या फिर impersonalist philosophers ये जानते हैं कि 84 लाख योनियां हैं और ये और जो है व्यक्ति इसके अंदर फंसा हुआ है, पर उनका ज्ञान पूरा अधूरा है और उनका निष्कर्ष भी अधूरा है.
But the Buddhists, they want to enter the darkness. They want to wipe everything out. They want complete silence, you could say. Darkness. They want darkness. What kind of conception is that? They want darkness. They want just to finish off all identity because of faulty logic.
पर जो बुद्धिस्ट है वो खास करके क्योंकि उनका जो न्याय है वो दूषित है, जिससे कि लॉजिक जो उनका वो फॉल्टी है, तो इसलिए वो सब कुछ खत्म कर देना चाहते हैं. पूरा शांति चाहते हैं, अंधकार चाहते हैं, अंधकार में रहना चाहते हैं, सब कुछ खत्म कर दो.
The faulty logic is, I've been in 8,400,000 species of life, and each and every time I have had a body, whether subtle body, they know about devas also, whether subtle body or gross body, in each and every species, I have suffered due to interaction of senses and sense objects. They know this.
बुद्धिस्ट वो जानते हैं अपने फॉल्टी लॉजिक से जो है ये इस न्याय से कि मैं जो है 84 लाख योनियों में भटक रहा हूं, तो हर बार जो है मैं इंद्रियों का इंद्रिय विषयों से संपर्क होता है और मैं दुख पाता हूं. तो वे जानते हैं कि दुख पा रहा हूं मैं 84 लाख योनियों में, इसलिए वो सब कुछ खत्म कर देना चाहते हैं.
Therefore, let me finish off all bodies and all action.
तो इसलिए अब मेरे को चाहिए कि मैं सब कुछ खत्म कर दूं, अपने आप को खत्म कर दूं, अपना शरीर खत्म कर दूं, सारा इंद्रियों का इंद्रिय विषयों से संपर्क खत्म कर दूं।
Like the mis logic of the black cat, so it's the same type of mis logic.
जैसे कि मतलब खराब न्याय जो था कि काली बिल्ली का, वैसे ही उनका न्याय खराब है, लॉजिक खराब है उनका।
I've had 8,400,000 species times the number of births I've appeared in each species. In other words, nobody can count it.
मेरे जो 84 लाख योनियों में अनगिनत जन्म हुए हैं, कोई गिनती भी नहीं कर सकता।
Each time has resulted in suffering and death. Every time I've had a body has resulted in suffering and death. Therefore, the only solution is to give up bodies altogether. This is the mislogic. There's no such thing. They don't believe there's any such thing as a body that's not subject to death and old age disease. They don't. This is very poor phenomenology.
तो अल्प ज्ञान के कारण, बहुत कम ज्ञान के कारण वे सोचते हैं कि मेरे को हर बार शरीर मिला, हर बार शरीर में मैं दुख पाता हूँ, हर बार जितनी बार शरीर मिला मैं दुख पाता हूँ इंद्रियों का इंद्रिय विषयों से संपर्क के कारण। तो अब मैं सारे शरीर खत्म करता हूँ, अब मेरे को और कोई शरीर नहीं चाहिए क्योंकि हर शरीर दुख देता है। उनको ये ज्ञान ही नहीं है कि ऐसा भी जीवन है जहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होती।
But the Vaishnavs know that is foolishness.
लेकिन वैष्णव जानते हैं कि ये उनका जो ज्ञान है मूर्खता से भरा हुआ है।
Because there's another type of body that you don't know about it. It's a spiritual body. It's not composed of earth, water, fire, air, mind, intelligence, false ego, ether. It's not composed of the material elements, but it's Satchitananda, Vigraha. They do not know this. That such a thing exists. Therefore, they want to finish bodies completely and finish. They don't know that there's Anandam, Bodhivaranam.
So, जैसे बुद्धिस्ट से नहीं जानते कि ऐसा भी एक शरीर है जहाँ पे मैं पूर्णतः आनंद में रह सकता हूँ, सच्चित आनंद में रह सकता हूँ। उनको ये ज्ञान ही नहीं है कि आध्यात्मिक जीवन होता है, आध्यात्मिक शरीर होता है, तो इस क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है, पर वैष्णवों को ये नॉलेज है।
Activities that result in such phenomena as ecstatic bliss, they don't know because they haven't experienced it, because Ananda is not available to impersonals, not available.
तो उनको ये ज्ञान ही नहीं है कि ऐसा शरीर है जहाँ पे आध्यात्मिक क्रियाएं होती है, आध्यात्मिक शरीर होता है, आध्यात्मिक लोक होता है, ये उनको पता ही नहीं। तो ये पता नहीं तो वो सब कुछ जो है कि वो आनंद के बारे में जानते ही नहीं कि आनंद नाम की कोई चीज होती है, आनंद अम्बुदिवर्धनम होता है, क्योंकि आनंद कभी भी इन बुद्धिस्ट को या फिर इम्पर्सनलिस्ट को मिलता ही नहीं है।
At best they can achieve some kind of nirvana, which means some kind of neutrality. You see? They can achieve some kind of neutrality, which means suspension, you know, without time and space, without material bodies. They can achieve that, but there's no Ananda there. But maybe you're not getting pierced by the threefold miseries, because you haven't got a material body, either subtle or gross, but still, you are not, you can't, in that state, you cannot get Ananda. It's not available. It's only available to the devotees.
तो हद मार के जो बुद्धिस्ट या फिर इम्पर्सनलिस्ट जो है वो निर्वाण ले सकते हैं। निर्वाण मतलब एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म। न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे क्या है कि चलो ठीक है, अभी जो है त्रिताप सता रहे हैं, तीन कलेश सताते हैं हर किसी को, तो तीन कलेश नहीं सताएंगे उस न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पर। उसके ऊपर की बात, आध्यात्मिक लोक की बात, आध्यात्मिक जीवन की बात उनको पता ही नहीं है।
Now we'll just complete with the rest of the purport from Srila Prabhupada's explanations. The illumination in this world emanates from the effulgence of Sudarshan. Get that? The effulgence of this, the light in this world is coming from the Lord's Sudarshan disc. This is amazing.
तो अब जो हम बाकी तात्पर्य पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद का, इस संसार का प्रकाश उस सुदर्शन के तेज से उद्भूत होता है जो भगवान की मूल दृष्टि है। तो इस संसार का जो तेज है वो सुदर्शन चक्र से आ रहा है, ये बहुत ही रुचिकर कथन है।
The next statement by Srila Prabhupada is amazing. He says, the original vision of the Supreme Personality of Godhead is the effulgence coming from Sudarshan. This is amazing.
तो ये जो कथन है कि इस संसार का प्रकाश उस सुदर्शन के तेज से उद्भूत होता है जो भगवान की मूल दृष्टि है, ये बहुत अच्छा कथन है।
The next statement by Prabhupada is also amazing. The illuminating principles of the sun, the moon, and fire emanate from Shushan.
अभी अगला जो प्रभुपाद बात बता रहे हैं वो भी बहुत रुचिकर है. सूर्य चंद्र तथा अग्नि के प्रकाश तत्व सुदर्शन से उद्भूत होते हैं.
The next statement by Prabhupada is equally astonishing.
अगली जो कथन है प्रभुपाद का वो भी बहुत हैरानी वाला है.
Similarly, illumination by knowledge also comes from Sudarshan.
इसी प्रकार ज्ञान का प्रकाश भी सुदर्शन से ही आता है.
Because with the illumination of Sudarshan, one can distinguish one thing from another.
क्योंकि सुदर्शन का प्रकाश ऊंच तथा नीच में अंतर बतला सकता है.
The superior from the inferior.
ऊंचे और नीचे का अंतर बता सकता है.
Generally, people accept a powerful yogi like Durvasa Muni as wonderfully superior.
सामान्यतः लोग दुर्वासा मुनि जैसे शक्तिशाली योगी को अद्भुत रूप से उच्च मानते हैं.
But if such a person is chased by the Sudarshan chakra, we can see how his real identity and understand how inferior he is because of his dealing with devotees.
किंतु यदि ऐसे पुरुष का पीछा सुदर्शन चक्र करे तो हम उसकी असल पहचान पा सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि वह भक्तों के साथ अपने व्यवहार में कितना निम्न है.
So everything will be destroyed in this world by the will of the Lord.
तो इस भगवान की इच्छा से जो है इस संसार में सब कुछ नष्ट हो जाएगा.
And all this illumination, including knowledge, is coming from Sudarshan. This is amazing.
और जो सारा प्रकाश जो है वो इस सुदर्शन चक्र से आ रहा है भगवान के, ये बहुत ही हैरानी वाली
बात है. Fire, the light of the sun and the moon, all coming from Sudarshan.
हम जो देख रहे हैं अग्नि देख रहे हैं सूर्य देख रहे हैं चंद्रमा देख रहे हैं लाइट देख रहे हैं सब प्रकाश जो सुदर्शन चक्र से आ रहा है.
Any questions?
किसी का कोई प्रश्न है?
Okay, thank you very much.
One question.
Your question, yes.
You ask it.
Hare Krishna Maharaj, thank you so
Into
much.
Into the mic, please.
Okay, Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna Maharaj, thank you so much. Okay, Hare Krishna Maharaj, thank you so much for the nice lecture. I have a question pertaining to the sun planet. You said that the, as far as I know, sun is the only illuminating body in this material world. And we get to know from some scientific journals that we are constantly receiving electric signals from other planets which are similar in their composition with the sun. So, but the scripture says there is only one sun in this material world. So, this kind of looks contradictory. So, how to understand this? Maharaj, I'll speak slowly this time. I will speak slowly and loudly this time. The scripture says that there is only one illuminating body in this material world, that is sun planet.
One illuminating body?
In this material world, that is sun planet. Sun planet gives energy and light to the whole material world. That's what you said. The planet sun gives energy and light to the whole material world.
The planets generally are reflecting light.
The sun planet gives them.
The question is, is there only one sun or many suns in a universe?
Well, there's only one sun in the universe. But each universe has a sun. There are many planets which are reflecting sunlight.
तो एक ही सन है एक ही सूर्य है और अन्य जो प्लैनेट्स हैं उसकी उसकी रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं.
But it's not a scientific fact. The scientists say that the moon only reflects light of the sun. It's not a fact. Not supported by Shastra.
So scientists कहते हैं कि केवल मून जो है वो सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहा है लेकिन ये स्क्रिप्चर्स में नहीं बोला गया है.
So they just base things on the imperfect senses and their imperfect telescopes.
तो साइंटिस्ट की सारी इंफॉर्मेशन जो है अपूर्ण इंद्रिया और अपूर्ण जो है उनके टेलीस्कोप के पर आधारित है.
And every 5 years they change their theory anyways, you know.
हर 5 साल में जो है साइंटिस्ट का कथन बदलता रहता है.
The moon is also independently effulgent.
मून भी जो है सूर्य के तरह ही पूर्णतया एफल्जेंट है, प्रकाशमान है.
That is not independently effulgent, but it's effulgence coming from Sturgeon.
पर मून भी जो है खुद ही रोशनी देता है, पर उसकी रोशनी कहां से आ रही है? सुदर्शन चक्र से.
So there is not more than one sun in the universe. Not more than one sun.
तो एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है.
Sometimes, I mean, there was a great king named Maharsh Priyavrata. He thought that there was too much darkness in the universe.
जैसे कि कभी कभार महान चक्रवर्ती सम्राट होते हैं प्रियव्रत महाराज जैसे, उनको लगा कि इस बहुत ही जगत में बहुत अंधेरा है.
He got into his chariot and he was circling around the universe.
तो वे अपने रथ पे आरूढ़ हुए और पूरे जो है यूनिवर्स के ब्रह्मांड के अलग अलग चक्कर लगाने लगे.
He and his chariot were so effulgent that it was lighting up all the areas that weren't covered by the sun. This is in the Bhagavatam.
तो उनके रथ के पहियों से जो है पूरा प्रकाशमान होते हुए उन्होंने चक्कर लगाए सात बार.
You'll be interested to know that the wheel of the chariot of the sun god was seen by ancient mystics in the Middle East.
आपको हैरानी होगी जान के कि सूर्य देव के रथ का पहिया जो एंशिएंट जो है मिस्टिक्स वगैरह जो योगी थे उन्होंने उसका दर्शन किया था.
An Eastern Middle Eastern sadhu, they had their own version of sadhus, but they were not pure devotees. Most of them were not pure devotees. Maybe Moses was.
तो ईस्ट में भी ऐसे कि अनेक साधु हुए, योगी हुए, पर वो शुद्ध भक्त नहीं थे.
In the Bible it says, or they say, Ezekiel saw the wheel way up in the middle of the sky, the effulgent wheel. What he saw was, by mystic vision, he saw the wheel of the chariot of the sun god.
तो जो ये एंशियंट ईस्टर्न जो हुए योगी हुए ये सब इन्होंने सूर्य देवता के रथ के पहिए का दर्शन किया अपने योग सिद्धि से.
Look it up on the net and see what it says about Ezekiel and how he saw the wheel, an effulgent wheel in the sky. What he saw the wheel of the chariot of the sun god.
तो आप इसको देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि कैसे जो है उन्होंने इसके दर्शन करे.
Now here's something you don't know about the sun god's chariot.
तो यहाँ पे जो है अभी सूर्य देवता के रथ के बारे में.
Do you know that his chariot has only one wheel?
तो यहाँ पे उनको पूरी जानकारी नहीं है सूर्य देवता के रथ के बारे में. क्या सूर्य
देवता? Section of the Bhagavatam that describes in detail. There's a reason why the sun god's chariot has only one wheel.
तो उनको पूरी जानकारी नहीं है, पर भागवतम बताता है कि क्यों सूर्य देवता के रथ में एक ही पहिया है.
It has a very long axle.
तो वो एक पहिया जो है वो उसका एक्सल जो होता है बीच का.
One end of the axle that doesn't have a wheel on it is rotating around Mount Sumeru.
तो उसका व्हील का जो पहिया का जो चक्का जो होता है वो सुमेरु के आसपास जो है रोटेट हो रहा है.
And on the chariot of the sun god, this is all described in the Bhagavatam. I'm not making this up, you know.
तो मैं अपने आप से नहीं बता रहा, सब भागवतम से बता रहा हूँ.
There's a whole show going on the chariot. You know, like there's a platform in the front of the chariot. There's a whole show going on the platform in the front of the chariot. The sun god has got his own entertainment and, you know, enlightenment.
तो उस रथ के आगे जो एक प्लेटफॉर्म है वहां पर जो है सूर्य देवता का पूरा वहां पे जो है रोमांचकारी चीजें होती रहती है सूर्य देवता के रोमांच के लिए.
So he's not bored, you know. There are hundreds of dancing beautiful apsaras on his chariot. This is no ordinary chariot.
तो जब उनका सूर्य देवता का रथ जब सुमेरु के चक्कर लगाता है तो सामने मंच पर अप्सराएं नाच रही होती है, तो सूर्य देवता जो है बोर नहीं होते चक्कर लगाते वक्त.
Many great sages reciting the Vedas and Vedic hymns and mantra.
उस मंच पे कभी अप्सराएं नाच रही होती है तो कभी महान ऋषि जो है वो वेदों का उच्चारण करते हैं.
And many other wonderful things are described as being on this chariot.
तो सूर्य
just in the front of the chariot. So he's watching his whole show while he's going around and around performing his service.
तो सूर्य देवता के रथ के आगे मंच पे ऐसी अलग अलग चीजें होती रहती है तो वो सब कुछ देखते हुए चक्कर लगाते हैं सुमेरु पर्वत के.
You look it up in the Veda base. Do you have Veda base?
इसकी जानकारी आपको वेदा बेस से मिलेगी. वेदा बेस होगा सबसे.
The chariot of the sun god. Of course, it's going to be mentioned so many times
that you, well, you'll eventually find the chapter, I don't recall which canto, where this is described exactly how this giant show is going on the sun god's chariot and how it's rotating around Mount Sumeru without a second wheel.
ये जानकारी आपको भागवतम के पांचवे स्कंद में मिलेगी जहाँ पे आपको पता चलेगा कि कैसे सूर्य देवता का रथ है उस पे आगे जो है एक मंच है और कैसे वो सुमेरु पर्वत के आसपास जो है घूम रहा है.
Okay, thank you very much. Jagat Guru Sri Baba Ki Jai. Granjana Shima Bhagatam Ki Jai. Nita Gopi Manandi Hari Hari Bolo.
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. ग्रंथा श्रीमद भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. His Holiness Bhakti Madhure Govind Swami Maharaj ki.